सिंपल थिंकिंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है। और आज के युग में क्या हो गया है, हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। आज हम एक हमको राज, सभी भाइयों को राज देना चाहिए, हमको क्यों दे रहे हैं? तो ये कारण कि जन्मे एक संग सब भाई, हम भाई जन्म साथ साथ लिए, भोजन संयम केल लड़काई, लड़कपन आदि सब बीता साथ में, तो विमल वंश यह अनुचित एक बंध बिहाई बड़े ही अभिषेक। इस पवित्र वंश में यह बहुत अनुचित बात है कि अन्य भाइयों को छोड़कर बड़े को ही राज तिलक दिया जाता है। कितना ऊंचा विचार भगवान का है, उनको राज दिया जा रहा है तो कहते हैं कि गलत हो रहा है, तो गलत नहीं हो रहा था, जेठ बेटा राज्य का अधिकारी होता ही है, तो इसलिए उसको दिया जा रहा है। तो जो भी है उसमें यह ध्वनित होता है कि भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ खाते थे, जो भगवान श्री कृष्ण समस्त सखाओं के साथ खाते, संकर्षण के साथ खाते। भोजन एक घर से नहीं आया है, भोजन अनेक घर से आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे घर से अच्छा आया है तो हम अपना अलग खा लिए और उसके घर से इंफीरियर आया है तो बेचारा वो खा ले। सारा भोजन एक जगह रखा जाता था और सबका भोजन सबको परेशान होता था, ये भोजन के स्टाइल थे। भगवान कितना सुंदर आचरण कर रहे हैं, इस तरह खा रहे थे। और खाते समय ऐसा नहीं था कि बस जल्दी खा लिया चलो गाय चराना है, हा हा हे ठाठा हो रहा है खूब खा रहे हैं। और कोई भी सखा कोई चीज खाता था उसको बहुत अच्छा लगता था तो तुरंत आता था कृष्ण के पास और कहता था कृष्ण ये बहुत मधुर है, ये खाओ ये खाओ, अपना झूठ था। और श्री कृष्ण कहते थे अच्छा मीठा है ठीक है दो खाते थे, कहते हाँ सखे ये तो बहुत मीठा है। और प्रत्येक सखा इस तरह से अपना उनको जूठा देता था, उनको ये नहीं भाना था ये भगवान है और यज्ञ पुरुष है यज्ञ भोक्ता है। इस तरह खाते थे। तो वर्षा काल में कंदमूल फल उसके अनुसार वे खाते थे, कंदमूल फलासन में फल भूल गए फल खाते थे। तो फल कहाँ से, दुकान से खरीदा हुआ नहीं, वन में जो फल मिलता था जामुन खजूर ये सब भगवान खा लेते। भोजन लीला का वर्णन राम कहते हैं सात दलों परिश्रम चर्वतो मिलते क्षण तृप्तान दृशान वत्सतान गाष्ठ शोधो भरस्वना। तो भगवान श्री कृष्ण देखते थे गऊओं को, गौए सादल ऊपरी हरी हरी दूध के ऊपर बैठकर आंखें बंद करके अब चरवण कर रही। गौए दो बार खाती हैं, एक बार तो घास खा लेती हैं और दूसरी बार उसके भीतर ही भीतर चबाती रहती थी मुंह में बार में, इसको चरवण कहते जुगाली करने। तो आंखें बंद करके और बिल्कुल चरवण करती थी, मतलब पूर्ण तृप्त थी, तृप्ता। इसी प्रकार से बैल या बाछी गाय सब तृप्त थे, बड़े बड़े थन थे उनके। तो सर्वकाल सुखावहम, सब समय में सुख देने वाले वर्षा काल की शोभा को देखकर भगवान उसका आदर किए, प्रशंसा किए कि वर्षा काल कितना अच्छा काल है, देखो गौओं को पर्याप्त भोजन मिल रहा है, यह सुख है वह सुख है। यदि वह वर्षा काल आत्मशक्ति प्रबृंगता भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकाशित हुआ, भगवान स्वयं वर्षा काल को बनाए हैं, घास बनाए हैं, सब कुछ बनाए, लेकिन फिर भी प्रशंसा कर रहे थे कि देखो वर्षा काल कितना अच्छा है। इस तरह वर्षा कालीन लीला भगवान की समाप्त होती है। अब शरद काल का वर्णन आ रहा है। एवं निवसत तस्मिन् राम केशवयोर् व्रजे शरद समभवत व्यभ्रा स्वच्छांग परुषा नीला शरदम वर्णयति एवं। हम लोग आज जहां गए थे सौनक ऋषि दास जी के घर में, तो उसमें शरद बिहारी जी रहते हैं, राधा शरद बिहारी। तो बड़ा है कि आज शरद का वर्णन भी आ गया, शरदम वर्णन, वर्षा काल का वर्णन किया और वर्षा काल में भगवान लीला का वर्णन किया। अब शरद काल का वर्णन करके फिर शरद कालीन लीला का वर्णन करेंगे, तो लीला का वर्णन तो आज नहीं आ पाएगा, लेकिन शरद काल का वर्णन सुनिए। एवं इस प्रकार वर्षा काल में विहार करते करते तस्मिन ब्रजे राम केशवयो हो, राम केशव निवसत हो, उस ब्रज में राम कृष्ण के मतलब श्री बलराम और कृष्ण के रहते रहते शरद समूह शरद काल आया। शरद आश्विन और कार्तिक को कहते हैं, यह लगभग प्रारंभ होता है सितंबर में, सितंबर अक्टूबर और आधा नवंबर तक, आधा सितंबर से आधा नवंबर रहता है शरद काल। बहुत सुहावना मौसम है, तो उस समय शरद की वर्णन कर रहे हैं। शरद कैसा है तो व्यभ्रा अभ्र माने बादल, बादल हट जाते हैं, आकाश आकाश साफ हो जाता है, धूली नहीं रहती है, बिजली नहीं चमकती है, स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ अंबु अपरुषा मिला। और अंबु सरोवरों के जल, नदियों के जल सब स्वच्छ हो जाते हैं। और अपरुष अनिला, अनिल माने हवा, वायु अब कठोर नहीं रह जाती है, बहुत वायु की गति धीमे हो जाती है, वायु थोड़ा ठंडा पना लिए बहने लगता है, मतलब समशीतोष्ण वायु बहती और सुगंधित फूलों की गंध लेकर के और मंद परुष नहीं रहते। हवा जब जोर से चलती है तो उसको परुष अनिल कहते हैं, हवा का जोर से चलना पसंद नहीं पड़ता है। तो वर्षा काल में हवा जोर से चलती है, कभी कभी हवा के झोंके आते हैं बहुत तरह के, लेकिन शरद काल के आने पर हवा मंद गति हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं इसकी कथा आज वहां पर हम लोग सुने, वो श्लोक आ रहा है कि शरद काल के आते ही नदियों और सरोवरों के समस्त जल स्वच्छ हो जाते बिना प्रयास के। वर्षा काल में पानी मटमैला होता है, मिट्टी का अंश मिला होता है, लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन शरद काल के आते ही वो साफ हो जाता है। प्रकृति में जल शरद काल में नीरज की बहुत उत्पत्ति होती है, नीरज कमल को कहते हैं, निर्मल पानी जमा जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है उसको नीरज कहते हैं। तो शरद काल में नीरज बहुत उत्पन्न होते हैं गांव में, जिन लोगों ने देखा होगा तो शरद काल के आने पर सरोवर में निश्चित कोई खिल जाती है, कमल की एक छोटी जाती है, छोटी छोटी कमल नहीं कहते कुमुदिनी, सब जगह खिल जाती है। तो कमल है कि उत्पत्ति शरद काल में होती है और उस शरद से निराली प्रकृति उजय, जितने भी जल हैं वे सब प्रकृति अपने स्वभाव में हो जाते हैं, उनकी गंदगी चली जाती है। प्रकृति का अर्थ अपना स्वभाव, जल का स्वभाव स्वाभाविक स्वभाव है स्वच्छ रहना, लेकिन उसमें कुछ आगंतुक वस्तुएं मिल जाती है इसलिए जल गंदा हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, ऊपर से जल गिरता है तो जल वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है, लेकिन भूमि का स्पर्श होते ही भूमि उसमें मिल जाती है, जैसे भूमि होती है उस रंग का पानी हो जाता है, मटमैला हो जाता है। और पूरा बरसात पानी इसी तरह से रहता है नदियों का, नदियों का पानी बहता जाता है बहता जाता है, फिर भी गंदा पानी रहता है, सरोवरों का गंदा हो जाता है, और शरद काल के आते ही सब साफ हो जाता है, कोई प्रयास नहीं करना होता है। इसी प्रकार से जिनका संसार में रम जाता है, संसारिक भोगों को पसंद करने लगता है, चित्त गंदा हो जाता है, जो भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति योग नहीं करते हैं और चित्त संसार में लग जाता है, लेकिन पुनः यदि वे भक्ति योग का सेवन करें, पुनः योग निश्चय हो जाए तो वे पुनः कृष्ण कांसस हो जाते हैं। हर एक बार बरसात में पानी गंदा होता है और शरद काल में साफ हो जाता है, हर एक बार प्रत्येक साल दृष्ट देखा जाता है। तो इससे उत्साह लेना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए भक्ति योग करने से, श्रवण कीर्तन आदि करने से चित्त भगवान में लग जाता है। तो ये जो शरद काल है उसकी उपमा भक्ति योग से दी जाती है। और यहाँ पर व्याख्या में लिखी गई है बात कि जो ज्ञान योग है, जैसे भगवान का ध्यान करना केवल, तो उससे होता क्या है कि वो केवल जीव शुद्ध होता है। जैसे किसी एक घड़ा का पानी शुद्ध किया जाए, एक घड़ा का पानी शुद्ध होने से तो नदी का पानी शुद्ध होगा नहीं, है ना। हो मान लीजिए किसी तरह से घड़ा का पानी शुद्ध हो गया, लेकिन ज्ञान योग में घड़ा का पानी कैसे शुद्ध होता है, मान लीजिए घड़ा का पानी मतलब चेतना, हमारी चेतना, तो कुछ काल के लिए एकांतवास करके ध्यान करके मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन फिर विषयों का संयोग पाते ही गंदा हो जाता है। जैसे घड़ा में पानी रखिए तो कुछ देर छोड़ दीजिए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ पानी हो जाता है, लेकिन थोड़ा हिला दीजिए तो फिर पानी गंदा है। शरद काल में जो पानी की शुद्धि होती है वो कितना भी हिलाइए कुछ भी कीजिए गंदा होने वाला नहीं है। शरद काल इस तरह से समाप्त है। तो इसी प्रकार से भक्ति योग करने से जिनका चित्त स्वच्छ होता है तो किसी भी तरह से फिर गंदा नहीं होता है, और कदाचित हुआ भी तो पुनर्योग निश्चय होया फिर भक्ति करने से शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी एक संदेश दे रहे हैं कि सबको भक्ति योग में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की भक्ति करने पर चित्त शुद्ध हो जाता है। पुनः योग निषेवया का अर्थ है कि हो सकता है कि चित्त बारंबार गंदा हो, लेकिन बारंबार भक्ति करने से शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, अब कहते हैं शरद काल के आने पर हुआ पंक मपा मलम शरद जहारा समीणाम कृष्ण भक्तिर जथा शुभम। शरद काल के आने पर व्योमन अभ्रम जहार, शरद काल आकाश के बादल को हटा देता है, आकाश को साफ कर देता है। लगता है वर्षा काल में जो बादल हैं वो आकाश की गंदगी जैसे लगते हैं, है ना, तो शरद काल आते हैं उनको साफ कर देता है। और आकाश का जो चंद्रमा है या तारे हैं वो रात में सब दिखाई पड़ने लगते हैं, सूरज खूब अच्छी तरह। तो शरद आते ही व्योमन अभ्रम आकाश के बादल को खत्म कर देता है। इसके साथ ही साथ भूत सावल्यम जहार, दूसरा काम क्या करता है शरद, भूत सावल्य को समाप्त कर देता है। भूत का अर्थ है जीव और सावल्य का अर्थ होता है संकर्ज। वर्षा काल में कई जीव एक जगह जुट जाते हैं, उनको सावल्य कहते हैं। इसको बहुत भीड़ भाड़ मतलब आप देखे हैं वर्षा काल में, हम तो कई बार इस बात को देखे हैं कि इतनी वर्षा होती है पानी भर जाता है कि कभी कभी सांप और चूहा को भी एक साथ रहना पड़ता है मेड़ में या घर में भाग आते हैं। वर्षा काल में सर्प आदि बाहर खेतों से घर में भाग आते हैं, ये चींटियां चींटा चींटी ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इधर उधर से भागकर एक जगह हो जाते हैं। और मनुष्यों में भी अब घूमना फिरना छोड़ करके एक घर में धक्का करते हैं बहुत लोग रहने लगते हैं। गर्मी के दिन में तो कहीं भी सो लेते हैं इधर उधर घूमते हैं, लेकिन अब वर्षा काल में अब बाहर सो नहीं सकते हैं, एक जगह जुटते हैं। तो सब प्रकार के जीव है कि संकीर्णता होती है, जुट जाते हैं एक जगह, और शरद काल आता है तो फिर वे लोग अब इधर उधर चले जाते हैं। तो शरद काल आकर के दूसरा काम करता है कि जीवों के संकर्ज को खत्म करता है, एक जगह नहीं रहते हैं, बिखरा देता है। अच्छा, तीसरा काम क्या करता है, भूव पंकम जहारा, जहारा माने खत्म कर देता है, भूव पृथ्वी के पंख को दूर कर देता है। पृथ्वी पर पंख हो जाने के कारण पृथ्वी अच्छी नहीं लगती है, जहां जाइए वहां पैर धसेगा, इधर कीचड़ उधर कीचड़ इधर कीचड़, बरसात में पृथ्वी गीली हो जाती है, लेकिन शरद काल आते हैं वो पंख समाप्त हो जाते हैं। पंख कहीं जाता नहीं है लेकिन उसका गीलापन दूर हो जाता है शरद काल के आने पर। तो इस तरह पृथ्वी के पंख को दूर करता है। अपाम मलम अपम माने जल और जल की गंदगी को दूर कर देता है। चार काम करता है शरद। क्या क्या चार? आकाश के गंदगी बादल को दूर करता है और जीवों की संकीर्णता को दूर करता है, पृथ्वी के पंख को और जल के मल को दूर करता है। वैसे ही जैसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण में की गई भक्ति चारों आश्रम के कष्ट को दूर कर देती है। कृष्ण भक्ति जथा शुभम, कृष्ण की भक्ति आश्रमिणाम अशुभम जहा। यदि कृष्ण की भक्ति कोई करता है तो चारों आश्रम में जो दुख है जीव को, अशुभ है, उसको भक्ति दूर कर देती है। तो चार आश्रम में दुख क्या है? अब बैठाना होगा आकाश के साथ, पृथ्वी के साथ, जीवों के साथ, पानी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पर समय बहुत कम है। देखिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से चालू करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम को आकाश कहा गया है, तो आकाश के बादल को दूर कर देता है शरद। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कुछ कष्ट है। कष्ट क्या है? गुरु की आज्ञा मानो, पानी भर लाओ, लकड़ी लाओ, ये करो वो करो, बैठ करके पढ़ो, घंटों घंटा वेद रटना पड़ता है, कई कष्ट है उसमें भी। वास्तव में पढ़ाई लिखाई भी एक कष्ट है। लड़के पढ़ना चाहते नहीं है, जबरदस्ती उनको पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? यदि उनको छोड़ दिए जाए उनकी इच्छा के अनुसार तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो एक कष्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम का। बहुत तप करना पड़ता है, गुरु के लिए सेवा करनी, पानी ढोकर के लाना, कहाँ कहाँ झरना से इधर उधर। लेकिन जब कृष्ण की भक्ति वो करने लगता है ब्रह्मचारी, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं रहता है कि वो गुरुकुल के नियमों का पालन करे, वो उससे ऊपर उठ जाता है। यदि भगवान की भक्ति करने लगता है तो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वह इस तरह से आचार्य की सेवा करे और लावे, उनके लिए भोजन बनावे, पानी लावे, ये करे वो करे। ये बात यहाँ पर टीका में कही गई, ये अशुभ है उस आश्रम का। इतना तप नहीं करना पड़ता। भगवान की भक्ति सुख स्वरूप है, आनंद के साथ अब वो गाता है, जपता है, भगवान की बातें सुनता है। अब उस आश्रम के ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कष्ट है उससे मुक्त हो जाता है। गृहस्थ आश्रम का क्या कष्ट है? गृहस्थ आश्रम का कष्ट है बहुत बहुत जीवों का पालन पोषण करना, बहुत तरह की सोचना, सबके लिए सोचना पड़ता है। इसका खर्चा कैसे चलेगा, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, आगे का भी चाहिए, इमरजेंसी के लिए चाहिए। आज हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब के द्वारा कि यहाँ इस देश में डॉक्टरों के ऊपर भी बहुत विपत्ति रहती है। कोई भी कुछ सो कर सकता है, कोई उसके घर पर पोस्टमैन आया चिट्ठी देने के लिए, पत्र देने के लिए, और उसका पैर यदि कहीं स्लिप कर गया, गिर गया, तो वो किस करेगा? ऐसा क्यों घर रखा? हम बताइए, हमारे यहाँ तो ऐसे वो गिर जाए तो और उसको मारा जाएगा, तुम क्यों गिर गए, तुमको आंख नहीं है, क्यों गिर गए? तो कई तरह का झंझट है घर की हस्ती में, बहुत बहुत दुख है, खास करके भूत साबल्य। गृहस्थ आश्रम क्या है? कई प्रकार के लोगों का निवास स्थान है। पता नहीं, मान लीजिए हमारा पुत्र बना तो पता नहीं कि पहले कहाँ का वो था, किस प्रकृति का था, वो आकर के हमारा बेटा हो गया, कोई हमारी पत्नी हो गई, कोई कुछ हो गया। परिवार में बहुत आदमी रहते हैं और हर एक का दिमाग अलग अलग रहता है, सबकी अलग अलग आकांक्षा होती है, वासना होती है, और सबको लेकर के चलना होता है। सबको लेकर के चलना होता है, तो इसको भूत सावल्यम कहते हैं, यही कष्ट है। लेकिन जब गृहस्थ भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसका यह कष्ट दूर हो जाता है, उसे अब चिंता नहीं होती है वास्तव में। और घर के लोग भी धीरे धीरे सुधर जाते हैं, उनकी कई वासनाएं नहीं रह जाती है। इच्छाएं बहुत होने से घर को चलाना कठिन होता है। संख्या कितना भी रहे, अगर इच्छा सबकी एक है तो कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, ट्रेन से लोग चलते हैं, अगर सब लोग ड्राइवर के अनुसार चलते हैं तो हजारों आदमी ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी विपरीत चलना चाहता है तो चेन कर देता है, रुक जाती है गाड़ी, है कि नहीं? एक आदमी वो जंजीर खींच दे बस गाड़ी रुक जाती है। एक आदमी भी विपरीत बुद्धि वाला हो तो चलाना कठिन हो जाता है, है कि नहीं? तो ये घर गृहस्थी में ऐसा है ही कि कई कई विचार होते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति चालू करनी चाहिए, तब जाकर घर गृहस्थी सुखद होगा, नहीं तो ये केवल दुख धंधा है। तो कृष्ण भक्ति जथा अशुभम जहर, कृष्ण की भक्ति इस संकट को दूर करती है। कई तरह से लोग, समाज शास्त्री लोग बहुत काल से विचार करते आ रहे हैं कि समाज कैसे सुखी होगा, परिवार कैसे सुखी होगा, ये कैसे सुखी होगा, वो कैसे सुखी होगा, है कि नहीं? हर एक साल रिसोल्यूशन बनाते हैं पार्लियामेंट में, इधर उधर ऐसे सुखी करो, ये सुखी करो, और समाज दुखी होता जा रहा है। तो यहाँ समाज को सुखी करने के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए बात बताई जा रही है। ये परिवार के अनुसार देश को भी सोच लेना चाहिए, देश भी एक परिवार है, राज्य भी परिवार है। तो कृष्ण की भक्ति ही सब प्रकार के अशुभ को, दुख को दूर करती है, इसलिए सीखना चाहिए। परिवार में भक्ति जरूर होनी चाहिए, तब अशुभ दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। यह गृहस्थ का, गृहस्थ आश्रम का दुख। और भुवः पंकम, पृथ्वी के पंख को दूर कर देता है शरद, मतलब जमीन को कड़ा कर देता है। ये वानप्रस्थ आश्रम का दुख है। वानप्रस्थ आश्रम में तप करना पड़ता है और शरीर पर मैल जम जाती है, नाखून बढ़ जाते हैं, केश नहीं काटना होता है, कई प्रकार का दुख है वास्तव में उस आश्रम में। लेकिन जब भगवान की भक्ति होती है तब जीव तपस्या का आग्रह नहीं करता है, वो भगवान की भक्ति में आनंद से रहता है और समय पर खाता है, पीता है, प्रसाद खाता है, और बहुत कठिन तप उसे नहीं करना पड़ता है ना। हम लोग तो देखे हैं जो गांव में ऐसा नियम रखते हैं कि हम नहा करके ही खाएंगे, लेकिन भक्त नहीं है तो उनको बहुत लेट भोजन मिलता है, और जो भक्त हैं वो तो सवेरे भगवान को भोग लगाते हैं, नहा लिए हैं, पा लेते हैं, खा लेते हैं आराम से। नहीं तो दिन दिन भर बिना खाए आदमी रह जाता है। कई प्रकार के कष्ट वानप्रस्थ आश्रम में है। तो वानप्रस्थ आश्रम का दुख भी भक्ति दूर कर देती है। और अपाम मलम, जल का मल, जल की गंदगी दूर कर, तो ये है संन्यास आश्रम का दुख। संन्यास आश्रम में भी अकेले रहना होता है। संन्यास धर्म में वर्णन किया गया है महाभारत में कि सवेरे जब नींद खुले सन्यासी की तो खड़ा जिस ओर हो रहा है उधर ही चल दे, जिधर फेस हो, और किसी से बताना नहीं चाहिए कि कहाँ जा रहा है, और प्रतिदिन किसी को कोई पता न लगे। और अब तो फोन नंबर है, जानते हैं कि वो सन्यासी कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ गया। सन्यास जीवन का मतलब ही होता है कि परिवार के लोग न जाने के कहाँ, और अलग चित देश होता है। कोई प्रयोजन नहीं होता है कि यहाँ जा रहे हैं तो लिख लिए हैं कि आगे ये करना है, कुछ नहीं, वो चला जाता है, इसको सन्यास कहते हैं। सन्यास आश्रम के नियम, और अकेले घूमे, भगवान में चित्त को रखे, जप करे, ये करे, वो करे, कोई प्रवृत्ति का कार्य ना करे सन्यास। महाभारत में कई चैप्टर में सन्यास धर्म का वर्णन किया गया, लेकिन ऐसा सन्यास अब इस युग में कहां मिल सकता है। तो सन्यास आश्रम में भी अकेले रहना, कई कई प्रकार का कष्ट है ये है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगता है सन्यासी तो इस प्रकार के कष्ट आदि का सामना उसे नहीं करना पड़ता। नहीं तो सन्यासी के लिए वर्णन है कि अगर उसको बुखार आ जाए तो दवा मांगने ना जाए किसी से, कंबल हो तो ओढ़े, नहीं तो सहे ऐसे। तो कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार के एकाग्रता का, तप का, कोई मन इसकी जरूरत नहीं रह जाए। कृष्ण भक्ति चारों आश्रम के दुख को दूर करती है। जैसे शरद ऋतु
आकाश से बादलों को खत्म करता है, जीव संकर्ज को खत्म करता है, पृथ्वी के पंख को खत्म करता है और जल के गंदगी को खत्म करता है। तो हम लोग भी हर एक साल देखते हैं इन बातों को। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं और पुनः बादलों का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों का वर्णन हुआ कि वायु की प्रेरणा से बादल जल बरसाते हैं, लेकिन शरद काल आने पर बादल अब जल नहीं बरसाते हैं। जो कुछ था उनके पास वो तो सब दे चुके हैं, जो कुछ रहता है वो दे चुके हैं। तो देने के बाद वे बहुत अच्छा लगते हैं, शुभ्र वर्ण के लगते हैं, और जब तक नहीं देते हैं तब तक काला काला लगते हैं। वर्षा काल में संग्रह करके धन रखते हैं तो काला काला लगते हैं। वर्षा काल में बादल काले रहते हैं और शरद काल के आने पर स्वच्छ हो जाते हैं। सर्वस्वम जलदा हित्वा विरेजु शुभ्र वर्चस। अपना सर्वस्व, स्व का अर्थ होता है धन, अपना सारा धन हित्वा दे देने के बाद जलदा जलद मेघ समूह शुभ्र वर्चस अब उजला लगने लगते हैं, चमकने लगते हैं और विरेजु बहुत सुंदर लगते हैं। सबका यह अनुभव है, शरद काल में बादल बहुत अच्छा लगते हैं, शुभ्र वर्ण के हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, अब कालापना नहीं रह जाता है उनमें, क्योंकि सारा दान कर दिए। ठीक वैसे ही वे सुंदर लगते हैं, जैसे जथा त्यक्तै सड़ा शांता मुनयो मुक्त किल विषय। शांत गुण आदि से युक्त, राग आदि से रहित जिसका चित्त है, वह वे मुनि जन जैसा अच्छा लगते हैं। जब उन्हें कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती है, तो मुनि जन जैसा अच्छा लगते हैं। ठीक उसी तरह बादल अच्छा लग रहा है। त्यक्तै सड़ा है, इसमें लिखा गया मुक्त किल विषय त्यक्तै सड़ा है, किल विषय। किलविष कहते हैं वासनाओं को, जिनके भीतर वासना है वो किलविष है, अपराध है, कोई ना कोई गलती करते ही रहेंगे। और ऐसा का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ वासना है, ऐसा तीन प्रकार की वासना बताई गई है। ऐसा धनैसणा, लोकायसणा और पुत्रायसणा है। और कभी कभी तो पुत्रायसणा के बदले दारायसणा कहते हैं शास्त्र में। प्रत्येक व्यक्ति में ये कामना होती है, ऐसा ऐसा का अर्थ है उत्कट कामना, उत्कट वासना। क्या? धन ऐसा, कि हमारे पास धन आ जाए, हमारे पास काफी धन हो, इसको ऐसा कहते हैं। धन की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन मनुष्य जितना धन चाहता है उतने की आवश्यकता नहीं है। चाहने के लिए तो एक व्यक्ति को सारी दुनिया दे दी जाए तभी कहेगा ठीक हुआ, अच्छा और कमी रह गई यही कहेगा, है कि नहीं? भगवान ने इस दुनिया में सारा धन बांट दिया है, थोड़ा 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 बांट दिया है। और जो भी व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करता है, इसका मतलब कि अब वो दुख भोगेगा, उसे दुख भोगना है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और दारासना या पुत्रासना, मनुष्य की कामना होती है कि हमें बहुत सी स्त्रियां मिले या स्त्री मिले, हमें पुत्र हो, सामान्य इच्छा है सबकी, सब में इच्छा होती है, लेकिन क्यों पुत्र हो ये भी आदमी विचार नहीं करता, भगवान में मति नहीं लगी हुई है। जनरल सबकी इच्छा है कि हमको बेटा हो जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमको स्त्री मिले और हमको धन मिले और दुनिया में मान मिले, लोकेशन है दुनिया में, हमको बड़ा पद मिले, मैं मिनिस्टर हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ऐसे हो जाऊं, सबकी यही इच्छा है कि नहीं? इसके लिए वोट लड़ते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, ये रोज रोज कंपटीशन है तो कुछ मुनिजन होते हैं विचारवान, जो त्यक्त ऐसा ऐसा से हीन होते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान के भक्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं। बादल भी जब तक संग्रह रखते हैं तब तक अच्छा नहीं लगते हैं, सर्वस्व जो दान कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज तक एक श्लोक में भी आप नहीं दिखा सकते हैं शास्त्र में कि भोगने वाले की प्रशंसा की गई हो, है कि नहीं? भोगने वाले की प्रशंसा नहीं की गई है, देने वाले की प्रशंसा सब जगह है। जैसे बलि महाराज ने सारा भूमंडल दे दिया, तीनों लोक दे दिया भगवान को, तो उनकी बहुत प्रशंसा है। लेकिन भोगने वाले कई कई लोग भोगे, मर गए, उनका नामो निशान मिट गया, सब कुछ खत्म हुआ, कीर्ति भी नहीं रह गई, राज तो गया ही, देह भी गया और अब कीर्ति छाई। कोई कितना भोगेगा? और भोगने से लाभ क्या है? मनुष्य को देने की आदत डालनी चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए, तब मनुष्य सुंदर लगता है, तब उसकी शुद्धि होती है। एक श्लोक में भागवत के दशम स्कंध के एक श्लोक में बताया गया है कि कालेन स्नान शौचाध्याम संस्कार तपसे जया शुद्धंति दान संतुष्टया द्रव्याण आत्मात्म आत्मविद्या। काल से भूमि शुद्ध हो जाती है, समय बीतता है तो भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है। जैसे वर्षा काल में भूमि गंदा हो गई, नहीं बैठ सकते हैं आप, कीचड़ हो जाता है, लेकिन कुछ काल बीतने के बाद अपने आप बैठने लायक हो जाती है। काल के बीतने, समय के बीतने से भूमि शुद्ध हो जाती है, काल शुद्ध कर देता है। स्नान शौचाध्यान, और स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको भगवान की पूजा करनी हो, आरती करनी हो, लेकिन इस तरह से आप नहीं छू सकते हैं, अगर स्नान कर लेते हैं तो छूने के योग्य हो जाते हैं, है ना? तो स्नान से शरीर की शुद्धि हो जाती है। और शौचाभ्याम, शौच से, प्रक्षालन से काष्ठ आदि बर्तन की शुद्धि हो जाती है। जूठा बर्तन है या है, उसको धो करके मान करके रख दे तो शुद्ध हो जाता है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार है, और संस्कार करने से जन्म शुद्ध होता है। जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, ये जन्म लेने के बाद कुछ वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, कुछ क्रिया की जाती है, तो गर्भ की शुद्धि होती है और जन्म की शुद्धि होती है, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार, संस्कार से गर्भ आदि की शुद्धि होती है। तपसा इंद्रियादि, तप करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, हमारे आंख कान नाक कान या मन की शुद्धि तप करने से होती है, भोग से नहीं। भोगों से इंद्रियां और अशुद्ध होती जाती है, तो तप से इनको शुद्ध करना चाहिए। तप का अर्थ है कि इनको संसारिक वस्तुओं में न लगाकर भगवान में लगाना चाहिए, तो इससे शुद्धि होती है। हम समझते हैं कि जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, जरूर द्वादशी के दिन वो अनुभव करते हैं कि मैं शुद्ध हूं, और दिन की अपेक्षा है कि नहीं? दूसरा आदमी जो एकादशी को भी खूब खाया है, वो नहीं अनुभव करेगा कि मैं शुद्ध हूं। हमारा तो पर्सनल अनुभव कि द्वादशी के दिन ऐसा लगता है कि जैसे और दिन की अपेक्षा में शुद्ध हो गया है। तप से शुद्धि होती है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। तो तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। जैसे आप सत्य भाषण कीजिए और सत्य न बोलिए तो जिह्वा की शुद्धि है, और जिह्वा की सबसे बड़ी शुद्धि है कि इसको भगवान के नाम में लगाया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से जिह्वा शुद्ध होती है भगवान का नाम गुण आदि बोलने से, कान सुनने से शुद्ध होता है, और हाथ भगवान की सेवा से या दान देने से शुद्ध होता है। ऐसे केवल साधु लगुन लगा लेने से साफ नहीं होगा, ये तो बाहरी शुद्धि है, लेकिन हाथ असली शुद्ध होगा ये भगवान की सेवा करने से, या दीनहीन का उपकार करने से, दान करने से शुद्ध होता है। एक श्लोक में लिखा गया है कि दाने न पाणी न तुकं कड़े न, कंगना से चूड़ी से हाथ शोभा नहीं देता है, ये देता है दान करने से हाथ शोभित होता है। दान से हाथ की शोभा बढ़ती है, भगवान की सेवा करने से। तो इसी तरह से तपसा इज्जया और पूजा करने से ब्राह्मण की शुद्धि होती है। जो ब्राह्मण पूजा आदि में रहता है तो वो शुद्ध रहता है, नहीं तो अशुद्ध माना गया। शुद्धियम इस तरह से दान ही, और दान से धन की शुद्धि होती है। आने में जो झूठ साँच बोले हैं, कई तरह के फाउल कर्म किए जाते हैं, उस धन की अशुद्धि है। धन कमाने में वास्तव में पहले तो इतनी अशुद्धि नहीं होती थी, लेकिन अब तो बहुत बहुत अशुद्धि उसके साथ चिपटी रहती पता नहीं कैसे कैसे, हमें तो इसका अनुभव नहीं है क्योंकि मैं कभी कोई बिजनेस नहीं किया हूं लेकिन जो कुछ भी हो, आज के युग में सहज समझा जा रहा है, समझा जा सकता है कि धन कमाने में जरूर कुछ गलत काम करना पड़ता है। तो ये जो गलत काम है वो है वो उस धन की अशुद्धि। तो धन की अशुद्धि को दूर करने के लिए दान है। वो दान दे करके उस धन को खाएंगे तब तो ठीक से जिलाएगा, नहीं तो जहर जैसा मार देगा वो, बिना दान दिए खाएंगे तो परंतु वह भी एक सीमा के अंदर अशुद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय काट काट करके और दान दिया करे, बेच बेच करके, वो शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि का मतलब जैसे मान लीजिए आप स्नान करके आए, गंदा है स्नान किए शुद्ध हो गए, लेकिन हमेशा अपने शरीर में मल लगा लगा करके और नहाया करें, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। वैसे क्या वो जल शुद्ध करेगा? तो कुछ ऐसे हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, स्वाभाविक कुछ पाप हो जाते हैं किसी से भी, और गृहस्थों से छोड़ दीजिए, सन्यासियों से भी पाप होते हैं, पाप होते हैं कुछ काम करने में, तो उसके लिए शुद्धि का उपाय बताया गया है। तो गृहस्थों के लिए धन की शुद्धि का उपाय है दान। दान का अर्थ देना, अब कहाँ दे कैसे दे, इन सब का भी बहुत विचार किया गया है, तब वो शुद्ध हो जाता है। तो धन की शुद्धि दान से होती है, और मन की शुद्धि संतोष से होती है। ये सुखदेव गोस्वामी का ही श्लोक है, संतुष्टिया मना। संतुष्टि का अर्थ है कि भगवान की कृपा से कुछ काम करने के बाद जो कुछ मिला उतने में ही बस पूरा अलम बुद्धि करे, सेटिस्फाइड रहे, इसको संतोष कहते हैं। असंतोष बहुत भारी दुर्गुण है मनुष्य का, और सबसे बड़ा दोष है लोभ। भागवत में लिखा गया है कि क्रोध की भी सीमा होती है, काम की भी सीमा होती है, लेकिन लोभ की सीमा नहीं होती। तो मान लीजिए किसी के अंदर बहुत भारी काम है, भोजन की कामना है, खूब खाया पिया, लेकिन खाने के बाद पेट भरने के बाद काम शांत हो जाता है, या स्त्री संग आदि की कामना शांत हो जाती है। देखा गया है ये काम शांत हो जाता है, क्रोध भी शांत हो जाता है। किसी पर क्रोध हुआ है उसको मार दीजिए, बाद में मन पछताने लगता है, ओ ये मार दिया है कि, वो शांत हो जाता है। लेकिन लोभ ऐसा दोष है कि भुक्तवा जितवा भुक्तवा दिशो दशा, दसो दिशा को जीत कर भोग कर भी लोभ मानता नहीं, कहता अभी कमी है ये कभी पूरा नहीं होता है। तो मन को शुद्ध करने का उपाय है संतोष, जितना मिला उतने में संतोष करे। ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे कर्मानुसार हमको ये दिए है, इसमें हमें संतोष करना है। और अवसर पाकर मैं यहाँ एक बात कह रहा हूँ, नीति श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को तीन विषय में बिल्कुल संतोष करना चाहिए। वो है कि संतोषो त्रिशु कर्तव्यो, स्वदारे भोजने धने, तीन में बिल्कुल संतोष करना चाहिए। वो है पहला स्वदारे, अपनी पत्नी में सदा संतुष्ट रहना चाहिए मनुष्य को, जानना चाहिए। शास्त्र लिखता है कि स्त्री की प्राप्ति भगवान के विधान से होती है। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का दैव के द्वारा बनाया हुआ मित्र कौन है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ मित्र है मनुष्य का, भगवान देते हैं। तो अनेक स्त्रियां हैं इस जगत में, किसी पुरुष के पास कौन स्त्री आएगी पहले से पता नहीं होता है, है ना, कौन आएगी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो आएगी वो ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ समझना चाहिए। हम लोगों के यहाँ विवाह के पहले लोग कहते थे कि जहाँ भावी होगी वहाँ होगा, जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा, है कि नहीं? ये सब सब लोग जानते हैं। तो जो स्त्री अपने भाग्य के अनुसार मिले पत्नी के रूप में तो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, यही समझना चाहिए कि यही सबसे सुंदरी है, गुणवती है, हमारे लिए और स्त्रियों की कोई कीमत नहीं, संतुष्ट रहना चाहिए। और एक स्त्री में यदि कोई पुरुष संतुष्ट रह गया तो वास्तव में वह ब्रह्मचारी माना गया है, वह महात्मा है, शास्त्र में इसकी बहुत प्रशंसा है। तो संतोष करना चाहिए। अब संसार में अनेक स्त्रियां हैं, अनेक गुणवती है, सुंदरी है, लेकिन उस पुरुष के लिए सब काल के समान है, जहर के समान है। और शास्त्र कहता है कि उम्र को घटाने में सबसे बड़ा पाप कौन है, सबसे बड़ा कारण कौन है, तो परदारा विमर्शन, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करना, यही है मनुष्य की आयु को कम करने में सबसे बड़ा कारण। अनायुष्यम कहा गया, स्कंद पुराण का वाक्य है। इसलिए इस दोष से मनुष्य को बचना चाहिए। धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ रहना है, भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्ध है भूतेषु कामोस्मि भरतर सभा। हे भरत श्रेष्ठ, जीवों में मनुष्यों में जो धर्म के अविरुद्ध काम है, मतलब अनुकूल काम वासना है, वो मैं हूं। अब बताए जिस काम को भगवान अपना स्वरूप कह रहे हैं, लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तो वह काम मैं हूं। इसकी बहुत प्रशंसा की गई है वास्तव में शास्त्रों में। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत बहुत बात कह सकूं, लेकिन इस सिद्धांत की बहुत प्रशंसा की गई है। रामायण में लिखा गया है कि और हो सकता है कोई भी पापी शुभ गति पा जाए, लेकिन परतीय गामी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष कभी शुभ गति नहीं पा सकता है, उसे घोर नरकों में गिरना पड़ता है। और किस नरक में, भागवत में लिखा गया तप्त सुरमी नरक में। सुरमी का अर्थ होता है मूर्ति। एक नरक लोक है जहां लोहे की मूर्तियां हैं, स्त्री मूर्ति पुरुष मूर्ति, और उनको लाल किया जाता है, हमेशा लाल रहती हैं, तप्त रहती हैं वो मूर्तियां। और पुरुष जो गलती किया है उसको स्त्री मूर्ति से सटाया जाता है जबरदस्ती, और जलता है, मरता है इस तरह हजारों वर्षों तक। और यदि स्त्री ने गलती किया है तो पुरुष मूर्ति से सटाया जाता है, और पुरुष ने गलती किया है तो स्त्री से, इस तरह ये भोगना पड़ता है। तो स्त्री में संतोष करना चाहिए, और स्वदारे भोजने धने, और भोजन में संतोष करना चाहिए। भोजन जो भी हमारे सामने आया है वो हमारे कर्म का फल है, दूसरा कोई दे नहीं सकता है खाना, जो ललाट में लिखा गया है वही सामने उपस्थित हुआ है। और भोजन आ गया तो उस समय पत्नी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, ये क्या बना दिया क्या बना दिया, जो तुम्हारे ललाट में लिखा गया था वही सामने उपस्थित है, ये क्या बना दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सामने जो भोजन आता है उसमें संतोष नहीं करते हैं, और जो नहीं सामने है उसकी याद करके तड़पते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो नहीं मिला उसमें रस आ रहा है, और जो सामने आया है उसमें रस नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं, जो सामने भोजन आ गया है संतोष करके खाना चाहिए। जी हाँ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का, लिखा गया है वास्तव में। हो सकता है कि उस दाना पर वो भारत में जन्मा चावल हो और उसको लिखा गया है कि न्यू जर्सी में एक आदमी खाएगा, तो वो आ जाता है एक्सपोर्ट होकर, है कि नहीं, या यहाँ की वस्तु चली जाती है वहां। एक बार मैं यहाँ से गया प्लेन से तो हमारे बैग में पड़ा था नट्स, पड़ा रह गया, मैं देखा नहीं। तो 3-4 महीने के बाद वृंदावन में भक्तों को बांटा गया, तो देखो अमेरिका की चीज आकर 3-4 बरस के। और अब तो सारी दुनिया में कहां की चटनी कहां जा रही है, कहां का अचार कहां जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन फ्रूट्स है तो क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स ये वो सब घूम रहे हैं। तो भगवान सेट किए हैं कि यह अन्न उड़ करके जाएगा इस आदमी के यहाँ मुख में, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। तो संतोष करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ भी खाने को दे दिया बस संतोष करे, नहीं, आदमी का भोजन होना चाहिए। आदमी के भोजन की बात की जा रही है, पशु के और बाघ के भोजन की नहीं। राक्षस के भोजन की यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। एक बार मैं ये बात कह रहा था तो एक व्यक्ति प्रश्न के, आप कहते हैं कि जो सामने आ जाए तो संतोष करे और सामने मांस आ जाए तो कहा कि वो एकदम बैल हो, समझ नहीं रहे। यह भोजन, आदमी के भोजन की बात की जा रही है। इस विषय में एक बार मैं एक कथा सुना था एक साधु से कि अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, मान लीजिए हमारा शिष्य है और मैं कहीं जा रहा हूँ, तो कोई घर में अतिथि आए और मैं ये कह दूँ कि बेटा उनको भोजन दे देना, तो हमारा शिष्य सोचे कि गुरु जी ने केवल भोजन कहा, ये नहीं कहा कि घास दो या मांस दो, केवल भोजन भर कहे हैं, क्या देना चाहिए अब बताइए। भोजन जो मैं करता हूँ तुम करते हो, जो डेली बनता है, भोजन का मतलब वो हुआ, वही अतिथि को भोजन दे देना। तो इस विषय में महात्मा लोग कथा कहते हैं, एक बार एक शेख के पास, धनी पुरुष के पास दो विद्वान आए, तथा कथित विद्वान, तो दोनों को दो कमरा दिए रुकने के लिए, एक रुका था एक कमरे में, एक रुका था दूसरे कमरे में। तो सेठ आए मिलने के लिए, चर्चा करने लगे, उन्होंने कहा कि एक और आए हैं विद्वान आपके यहाँ। तो पूछे दूसरे विद्वान, कौन है वो, कहाँ के हैं? तो कहे यहाँ के हैं वहाँ के हैं। तो वो सुन करके क्या कहता, अरे वो तो बैल है, वो विद्वान क्या है, तो बैल है। अच्छा, इससे मिल करके जब उस बैल के पास वो गए, उस आदमी के पास गए मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए, तो उन्होंने चर्चा किया कि एक और विद्वान आए हैं काशी से चाहे जहां से भी, तो वो सुन करके कहा रहे वो तो गधा है, वो क्या है, वो तो ही है। तो वो सेठ बहुत चतुर था, जब भोजन का समय आया तो उसने अपने सेवक से कह दिया कि एक को घास काट करके दे दे, चाहे दोनों को घास काट करके दे, एक गधा है एक बैल है। वही लोग अपना आइडेंटिटी बताए हैं, वो लोग खुद बताए हैं। तो खाने के समय उनको गधा का भोजन बैल का भोजन दे देना। तो यही हुआ, जब वो तो सेठ तो अपने ऑफिस में बैठे थे और सेवक ले गया उनके पास टोकरी में घास, भूसा घास ले गया, खल्ली आदि डाल कर तो उनके पास डाला। तो पहले वो समझे नहीं कि ये क्या बात है, और उसके पास जो गधा था उसके पास भी ले गए, मैंने जिसको कहा था गधा उसके पास भी ले गए, रख दी। तो लोग पहले समझे नहीं, भोजन का समय बीत गया, लंच का समय भी बीत गया सब। तो ये लोग बड़े क्रोधित हो रहे थे, बहुत क्रोधित हुए। अंत में वो लोग बुलाए कि सेठ को बुलाओ, कहाँ है, भोजन नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो सेठ आए, कहे कि वो लोग कहे भोजन क्यों नहीं भेजा, तो कहा भोजन तो आपका भेजा गया, बहुत जल्दी भेज दिया था मैं, 8 बजे के करीब ही भेज दिया था। क्या भेज दिया था? तो दोनों एक जगह थे उस समय, तो कहे कि आप बताए थे ना कि वो गधा है और उन्होंने कहा था कि वो बैल है, तो आपका भोजन मैं भेज दिया था, आप लोग कहे थे ना। आप बताए थे ना कि वो गधा है और ये बैल है, तो मैं आपके आपके स्वाभाविक भोजन को भेज दिया था। तो अब वो लोग पछताए, फिर माफी मांगे कि ऐसा हमने गलती किया, ये किया वो किया। तो जो कुछ भी हो, यहाँ हम अगर कह रहे हैं कि जो भोजन मिले उसमें संतोष करना चाहिए, तो इसका मतलब सात्विक भोजन हुआ, राक्षसी भोजन नहीं, तो उसमें संतोष करना चाहिए। और भोजन में यदि व्यक्ति संतोष करता है तो स्वस्थ रहता है, निश्चिंत रहता है, नहीं खाया और खा करके उस भोजन के विरह में मर रहा है जो उसे मिला नहीं है। हमारा एक मित्र है, अब तो नहीं है, पहले जब मैं इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे साथ रहता था, उसकी आदत थी कुछ भी खाने को आता था तो जो सामान नहीं होता था उसी की याद करता रहता खाते समय। और कुछ भोजन मिल गया तो वो अचार रहता तो मजा आ जाता है, अगर अचार है तो दही रहता तो मजा आ जाता, ये रहता तो मजा आ जाता। मैं सुनते सुनते उब गया, कहा कि जो है उसमें क्यों नहीं मजा देख रहे हो, जो नहीं है उसमें मजा देख रहे हो। तो इस संसार में वास्तव में दुख है, इसमें नहीं है मनुष्यों को कि हमको नहीं है। हम समझ में दुख क्या है, जनरली संसार में आप विचार करके देखिए तो दुख यह है मनुष्यों को कि वह उसके पास है, हमारे पास नहीं है इसका दुख नहीं है, वह दूसरे के पास है इसका बहुत भारी दुख है। अगर सबके पास नहीं होता तो वो सुखी रहेगा। है ना, ये जनरल आइडिया है। अगर वो शुरू से ही गरीब रहे और सब लोग गरीब हैं तो हाँ ठीक है, लेकिन दूसरे के पास हुआ तो ये बहुत भारी दुख की बात हो जाती। ये संतोष का विरोधी भाव है। तो मन संतुष्ट होता है तो मन वह शुद्ध रहता है, और आत्मा कैसे शुद्ध होता है, आत्मविद्या, आत्मविद्या से आत्मा शुद्ध होता है। आत्मविद्या भागवत, ये भागवत आत्मविद्या है, इसको बार बार कहा गया है। आत्मा माने भगवान, भगवान को समझाया गया। तो मैं यहाँ पर ये इसकी व्याख्या कर रहा था कि बादल अपना सर्वस्व दे करके शुद्ध हो गए, चमकने लगे शरद काल में, तो इसी तरह से वासनाएं छोड़ने के बाद और अपना सर्वस्व देने के बाद बड़े बड़े लोग शोभित होते हैं। बलि महाराज दान देने से पहले उतना शोभित नहीं थे जितना देने के बाद चमके। जब कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया तो दान करने के बाद चमक गया। दधीचि मुनि अपनी अस्थि दान करने के बाद विश्व विख्यात हो गए। श्री महाराज अपना मांस दान किए। बादल अपना जीवन दान करता है, जल ही उसका जीवन है लेकिन अपना सर्वस्व दे देता है दूसरे के हित के लिए। तो बहुत प्रशंसा की गई है वास्तव में दान की। तो इस तरह से मनुष्य को ऐसा त्याग करके संतोष करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि गिरयह मुमुचुः तोयम् क्वचिन् वा मुमुचुः शिवम् क्वचिन् न मुमुचुः शिवम् यथा ज्ञानामृतम् काले ज्ञानिनो दधते न वा। कभी कभी पर्वतों से जल गिरने लगता है, वर्षा काल में गिरता है और शरद काल में थोड़ा कम होते होते फिर बंद हो जाता है, और किसी समय जल नहीं गिरता है। आपने देखा होगा पर्वत से जल गिरता है, झरनों से या नीचे गुफा से भी कभी जल बहता है कभी नहीं बहता है। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानी लोग भक्तजन योग्य अधिकारी पा करके ज्ञान देते हैं, नहीं तो नहीं भी देते हैं, चुपचाप रहते हैं। ऐसा देखा गया जैसे नारद मुनि मृगारी को ज्ञान दिए, सब जगह ज्ञान नहीं देते हैं, जब योग्य अधिकारी मिलता है तो ज्ञान देते हैं, नहीं तो चुपचाप रहते हैं। या प्रहलाद महाराज चुपचाप थे, लेकिन जब असुर बालक उनको मिले, योग्य व्यक्ति मिल गए तो ज्ञान देना चालू किए। या जट भरत जी बिल्कुल चुप रहते थे, अपने को गूंगा मूर्ख बहरा जैसा दिखाते थे, लेकिन जब योग्य अधिकारी राजा रहुगण मिले तो उन्होंने प्रवचन चालू कर दिए, ज्ञान दिए। तो ज्ञानी लोग ज्ञानामृत का दान अधिकारी को पा करके करते हैं, नहीं तो चुपचाप रहते। जैसे पर्वतों से कभी जल गिरता है और कभी नहीं गिरता है, इससे उनको ये बात याद रहेगी। इसी तरह से ज्ञानी लोग कभी ज्ञानामृत बांटते हैं और कभी नहीं बांटते। अधिकारी मिल गया तो प्रवचन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब फिर गृहस्थों पर उक्ति ला रहे हैं। नैवा विदं क्षीय मानम जलम गाध चले चरा जथायु रम वहम छयम नरा मूढ़ा कुटुम्बिना। जैसे शरद काल में गड्ढों का जल दिन पर दिन सूखता जाता है, इसको गाध जल कहते हैं, थोड़ा पानी रहता है और भी सूखता जाता है, अगाध जल का अर्थ बहुत ज्यादा पानी, लेकिन गाध जल है चरा, छोटे से गड्ढे में जीव रहते हैं, जलचर जीव मछली आदि, और पानी दिन पर दिन घटता जाता है। पर वे मूर्ख जलचर ये नहीं जानते हैं कि पानी घट रहा है, और पानी के घटते ही हमारी क्या दशा होगी, हम मारे जाएंगे, मछली खाने वाले भी मार देंगे या ऐसे भी सट करके मर जाएंगे, वो नहीं जानते हैं। ठीक इसी तरह से कुटुम्बिनः मूढ़ा नरः, परिवार के पालन में व्यग्र गृहस्थ मूढ़ अनु अहम प्रतिदिन छीण होती हुई आयु पर विचार नहीं करते हैं। अपने हाथ से कैलेंडर भी बदलते हैं, डेट बदलते हैं टेबल पर, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारा 24 घंटा गया है ना। वो केवल संसारिक प्लान परिवार आदि के विषय में ही सोचते रहते हैं। जथा आयु अनु अहम क्षयम्, वास्तव में आयु अनु अहम प्रतिदिन काटा जा रहा है। 24 घंटे का समय बीतता है तो 24 घंटा हमारे जीवन का गया और निरंतर बीत रहा है। जैसे कोई आदमी बक्से में रुपया रखा हो और हमेशा उसमें से निकलना चालू हो, एक आना दो आना चार आना, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया निकल रहा निरंतर, वैसे ही हमारे आयु कोष से 1 मिनट 2 मिनट घंटा पल सप्ताह पक्ष वर्ष निरंतर जा रहा है और एक दिन माइनस हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन नरा मूढ़ा कुटुम्बिनः, खास करके कुटुम्बी और मूढ़ ये अपने प्रतिदिन कम होते हुए आयु पर विचार नहीं करते। प्रतिदिन आयु कम हो रही है ना किसी की तो बढ़ तो नहीं रही है कि नहीं, जितना कोटा है जितना निश्चित आयु है उसमें से प्रतिदिन घट रही है आयु। विवेकी लोग विचार करते हैं, विचार करके भगवान का भजन करते हैं, नित्य जीवन पाने के लिए, अमृत जीवन पाने के लिए बैकुंठ में वे, ये आयु घटे कोई बात नहीं है, आयु घटती है लेकिन भजन के साथ घटती है, कुछ कमा करके समय जाता है। जैसे मान लीजिए आज का समय बीता किसी का और उसने खूब नाम जप किया, भागवत सुना, पढ़ा, तो कोई बात नहीं। जैसे आपका बहुत धन खर्च हो गया रुपया, लेकिन उसके बदले बहुत अच्छा सामान मिल गया, तो रुपया खर्च होने का कोई ग्लानी नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है, कह रहे यार तो सही दाम में मिल गया, सस्ता में मिल गया, रुपया घर से गया उसका कोई अफसोस नहीं होता, यदि सामान मिल जाए तो। एक दिन जीवन का गया कोई बात नहीं, यदि भगवान की भक्ति में गया तो ठीक है, और भगवान की भक्ति में नहीं गया, इस तरह से गया तब तो बहुत बड़ी हानि है। परंतु कुटुंब के पालन में रत रहने वाले लोग और मूढ़ देह को मैं और देह और सूत्र आदि को मेरा मानने वाले मूढ़ कहे जाते हैं, वे विचार ही नहीं करते हैं कि आयु घट रही है। इस तरह तो एक प्रश्न होता है कि यदि कोई मनुष्य घर में दुराशय, दुराशय का अर्थ है कि गृहम एव सर्वार्थ प्रदम इति दुष्टादि।